नमस्कार भारत, 10 फरवरी दिन बुधवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में प्राइमरी चुनाव की वोटिंग खत्म, नतीजों का इंतजार। भारत नेपाल सीमा पर नाकाबंदी खत्म होने के बाद खुलने लगे हैं बाजार। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में मतों के ध्रुवीकरण के आरोप।
मुजफ्फरनगर में ये इस तरह की स्थिति जिंदगी जी रहे हैं कि हमारे लोगों पे 900 मुकदमे हैं, उन लोगों पे 10 मुकदमे भी नहीं है। हमारे लोग आज तक जेलों में पड़े, उनका कोई आदमी भी जेल में नहीं है।
क्या नक्सल प्रभावित इलाकों में पत्रकारों के लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है?
बस्तर में पत्रकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो किस लक्ष्मण रेखा के तहत पत्रकारिता करें, उसकी अपनी बनाई लक्ष्मण रेखा, पुलिस की उम्मीदों की लक्ष्मण रेखा, या वो लक्ष्मण रेखा जो नक्सलियों की उम्मीदों की है।
समाचार पत्रों की समीक्षा और खेल की खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार दिलनवाज पाशा से। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी की दौड़ में न्यू हैम्पशायर में हो रहे प्राथमिक मतदान में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी की दौड़ में अरबपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं। सर्वे के मुताबिक दूसरे नंबर के लिए पिछले सप्ताह आयोवा कॉकस जीतने वाले टेक्सास के सीनेटर टेड क्रूज और फ्लोरिडा से सीनेटर मार्क रूबियो के बीच कड़ी प्रतिद्वंद्विता है। वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी में बर्नी सैंडर्स के हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है। डेमोक्रेटिक पार्टी का आयोवा कॉकस हिलेरी क्लिंटन ने बेहद कम अंतर से जीता था। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की एक करीबी सलाहकार ने संकेत दिए हैं कि सीरियाई सेना देश के उत्तरी इलाकों में चल रही लड़ाई को तुर्की सीमा तक ले जाएगी। बुथायना शबान ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया है कि सरकार, उसके समर्थक बल सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो पर पूरा कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने विद्रोहियों की संघर्ष विराम की मांग को नकार दिया है। विद्रोही संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित शांतिवार्ता में शामिल होने के लिए एलेप्पो में संघर्ष विराम की मांग कर रहे हैं। शांतिवार्ता पिछले सप्ताह ही टूट गई थी। दूसरी ओर मानवाधिकार समूह तुर्की से सीमा पर इकट्ठा हो रहे शरणार्थियों को प्रवेश देने की अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक एलेप्पो में लड़ाई से 3 लाख लोगों तक मानवीय मदद की पहुंच कट जाएगी। अपनी हंगरी विदेश यात्रा के दौरान तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत कावसोग्लू ने कहा कि तुर्की सीरियाई शरणार्थियों को जगह दे रहा है। उन्होंने कहा,
zalim bir rejimden, Esad rejiminden kaçıyorlar. Şimdi bir de Rusya'nın hava saldırıları.
हमने रूसी हवाई हमलों पर बात की, उनकी वजह से 50,000 से ज्यादा लोग जान बचाकर तुर्की सीमा पर पहुंचे हैं। हमने 10,000 लोगों को शरण दी है, जबकि बाकी के लिए सीमा पर कैंप बनाए हैं। हम नियंत्रित तरीके से उन्हें तुर्की में दाखिल कर सकते हैं। यदि हवाई हमले जारी रहे तो सीमा पर प्रवासियों की तादाद 1 लाख से 10 लाख तक हो सकती है। अमेरिका की खुफिया सेवा के प्रमुख जेम्स क्लैपर के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को दरकिनार कर अपना परमाणु संयंत्र शुरू कर दिया है। सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सामने पेश होते हुए क्लैपर ने बताया कि रिएक्टर से हथियार बनाने के लिए जरूरी प्लूटोनियम हफ्तों या महीनों के भीतर उपलब्ध हो जाएगा। रविवार को उत्तर कोरिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्च कर अंतरिक्ष में उपग्रह स्थापित करने का दावा किया था। चंद सप्ताह पहले ही उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण भी किया था। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने बिजली घरों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए राष्ट्रपति ओबामा की योजना पर अस्थायी पाबंदी लगा दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव। कार्यक्रम की शुरुआत अमरीका से। अमेरिका में इस वर्ष नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। उस चुनाव से पहले उम्मीदवार तय करने के लिए अमेरिका में इन दिनों प्राइमरी चुनाव हो रहे हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों को चुनने के लिए न्यू हैम्पशायर राज्य में आज प्राइमरी चुनाव की वोटिंग हुई है। ये प्राइमरी चुनाव क्या हैं, इसमें कौन कौन से उम्मीदवार हैं और इस प्राइमरी का क्या खास महत्व है, इन तमाम पहलुओं को तसल्ली से समझाने के लिए बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय अमेरिका से टेलीफोन लाइन के जरिए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ब्रजेश जी, श्रोता इस खबर को आसान शब्दों में समझना चाहेंगे।
जी, सबसे पहले तो ठीक है, मैं आसानी से कोशिश करता हूँ। ये प्राइमरी चुनाव जो है एक तरह से दोनों पार्टियां यहाँ की यानी कि रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स इस प्रक्रिया के जरिए अपने अपने उम्मीदवार चुनती हैं, यानी रिपब्लिकन्स अपने उम्मीदवार चुनते हैं और डेमोक्रेट्स अपने उम्मीदवार चुनते हैं, और हर राज्य में अमेरिका के 50 राज्य में ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब आप 20-25 राज्यों के चुनाव तक आ गए और लगने लगा कि हाँ एक खास उम्मीदवार जो है वही जीतेंगे इसमें, तो एक तरह से मान लिया जाता है कि वो उस पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे। लेकिन आपको याद होगा 2008 में ओबामा और हिलरी की जो टक्कर हुई थी उसमें काफी दिनों तक बिल्कुल जैसे लग रहा था कि आखिरी पड़ाव तक ये लड़ाई चली थी। फिलहाल अभी मैं न्यू हैम्पशायर में हूँ जहाँ इस वक्त 2 मिनट पहले मतदान खत्म हुआ है, लेकिन जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनके आधार पर अमरीकी मीडिया नेटवर्क्स ने रिपब्लिकन पार्टी में डोनाल्ड ट्रंप को विजेता घोषित कर दिया है और डेमोक्रेट्स में बर्नी सैंडर्स को विजेता घोषित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा कि अभी औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं हुआ है और ये मीडिया नेटवर्क्स की तरफ से ये प्रोजेक्शन किया गया है। 1-2 जगहों पर अभी भी मतदान चल रहा है, जबकि 8 बजे अमरीकी वक्त के हिसाब से मतदान खत्म हो जाना था, लेकिन वहां लोग पहले कतार लगा चुके थे तो इसलिए कहा गया कि वो अपना वोट जब डाल सकते हैं। और अंदाजा आप कर सकते हैं कि रात भर बर्फबारी हुई है बाहर, इस वक्त से मैं बाहर से लौटा हूँ, -7 डिग्री है सेल्सियस टेम्परेचर है, और उसमें भी ये लोग जोश पे लाइन में खड़े हैं। मैं जहां पर खड़ा हूँ इस वक्त वहां डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वहां कतार लगा रखी है जीत के बाद की जो पार्टी होती है उसमें शामिल होने के लिए, और उनमें काफी जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है क्योंकि एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप आयोवा में भी आगे चल रहे थे लेकिन वो वहां नंबर 2 पर आए थे, यहाँ वो काफी बड़े फासले से चल रहे थे, और अगर ये मीडिया नेटवर्क्स का जो प्रोजेक्शन है वो सही साबित होता है तो यहाँ वो जीत हासिल करने जा रहे हैं।
ये बताएं कि न्यू हैम्पशायर प्राइमरी की खास बात क्या है?
देखिए, न्यू हैम्पशायर इसलिए जाना जाता है कि एक तो पूरे देश का सबसे पहला जिसे हम प्राइमरी इलेक्शन कहते हैं वो ये होता है। आप बोलेंगे कि आयोवा में शुरुआत हुई थी, आयोवा में जो चुनाव की प्रक्रिया है उसे कॉकस कहते हैं, और वो बड़ा ही इनफॉर्मल सा प्रोसेस होता है जिसमें लोग एक जगह जमा होते हैं और हाथ उठाकर वोटिंग करते हैं, लेकिन मतदान केंद्र पर जाकर के वोट पर ठप्पा लगा करके जो प्रक्रिया होती है वो न्यू हैम्पशायर से शुरू होता है, और इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। और कोशिश ये एक और चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि पिछले 40 सालों में कोई भी उम्मीदवार अगर जिसने ना तो आयोवा जीता हो ना न्यू हैम्पशायर जीता हो वो राष्ट्रपति नहीं बन पाया है, सिर्फ एक इंसान के सिवा, और वो थे बिल क्लिंटन, जो दोनों में हार गए थे लेकिन फिर भी वो राष्ट्रपति पद के लिए चुन लिए गए थे। तो वो एक बहुत महत्व है, और यहाँ खासकर जो स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट वोटर्स कहते हैं न्यू हैम्पशायर में उनकी तादाद बहुत बड़ी है, तो यहाँ एक लोकतंत्र को लेकर के जो एक जोश है वो बहुत ज्यादा नजर आता है न्यू हैम्पशायर में, और इसलिए कहा जाता है कि न्यू हैम्पशायर जो तय करता है कई बार वो पूरे देश को एक एक तरह का एक रास्ता दिखाता है कि ये उम्मीदवार आगे जा सकता है।
जी, ये थे अमेरिका से बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय, जिनसे इस खबर पर अपडेट के लिए हम अगले कार्यक्रम विश्व भारती में भी बात करने की कोशिश करेंगे।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, अकाल और उसकी विभीषिका पर कवि नागार्जुन की ये पंक्तियां शायद 2-1 दिन पहले तक उन लोगों की दशा पर सटीक बैठती हों जो भारत से सटे नेपाल के तराई इलाके में रहते हैं, जहां 4-5 महीने से जारी नाकाबंदी हटने के बाद लोग राहत की सांस ले रहे हैं, जहां जनजीवन धीरे धीरे ही सही सामान्य होने लगा है। सुनिए जनकपुर धाम से ब्रिज कुमार यादव की ये रिपोर्ट।
नेपाल के तराई में करीब 6 महीने से चल रही आम हड़ताल और 5 महीने की नाकेबंदी जैसे ही हटी बाजार में चहल पहल शुरू हो गई। रोजमर्रा की जरूरी चीजों की परेशानी से जूझ रहे लोगों ने जमकर खरीदारी की। बाजार की बंदी से लगातार नुकसान उठा रहे व्यापारियों की चिंता अब खत्म हो गई है, उनके परिवार वाले भी अब राहत के सांस ले रहे हैं। वीरगंज के एक प्रमुख व्यापारी सुबोध कुमार कहते हैं,
नाकाबंदी के कारण दिन बिताना हम लोगों के लिए काफी मुश्किल पड़ा और बंद करके अपने मकान मालिक को भाड़ा देना पड़ा, स्टाफ को पालना पड़ा, जिससे हम लोग काफी कर्जा में डूब गए। मेरे परिवार के लोग बहुत दुखी रहे कि भाई बंदी में मेरे बेटा को इतना नुकसान हो रहा है, मेरे पति को इतना नुकसान हो रहा है, यह भरपाई कैसे होगा। खुश है, चलो खुल गया नेपाल, दुकान खुल रहा है, थोड़ा बहुत व्यापार होगा ही।
दिन भर सुनसान रहने वाली सड़कों पर यातायात बहाल हो गया है, गाड़ियों के लिए आसानी से ईंधन मिलने लगा है। ईंधन की कमी के कारण लोगों ने जरूरी कामों के लिए भी गाड़ी निकालना बंद कर दिया था, लेकिन अब वही लोग सैर सपाटे के लिए निकल रहे हैं। बाजारों में भी खूब भीड़ उमड़ने लगी है। पूर्व प्रधानमंत्री सुशील कोइराला के निधन पर नेपाल में अभी शोक है, लेकिन हड़ताल खत्म होने से मिली राहत के बाद बाजारों पर इसका असर कम ही दिखा। वीरगंज के धर्मनाथ सराफ कहते हैं,
बंद करने से तो कोई फायदा है ही नहीं, हम लोग का ही नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है। बंद से तो हम लोग सब पूरा व्यापारी ही दुखी था कि गैस नहीं समय से मिलता था, दौरा नहीं मिलता था, खाने के सामान नहीं भाई, बॉर्डर बंद होने से हर चीज का परेशानी रहता था। अब हम लोग आस्ता आस्ता सुविधा तो हो ही रहा है।
तराई में बंद हुए उद्योग भी खुलने लगा है। इससे पहले हालात यहाँ तक पहुँच गयी थी कि कारोबारी नेपाल के इन इलाकों को छोड़कर जाने के बारे में सोचने लगे थे। वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष प्रदीप केरिया का मानना है कि अब जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सारा सहज होते जा रहा है, जहाँ तक पेट्रोलियम का थोड़ा सा यहाँ असहज परिस्थिति थी वो भी इंडियन ऑयल ने देना शुरू कर दिया है। उद्योग प्रतिष्ठान जो भी हैं अब सभी सुचारू हो रहे हैं, बाकी तो यहाँ सब नॉर्मल सिचुएशन से भैरवा और विराटनगर नाका प्रयोग करके रॉ मटेरियल सब ला रहे थे, अब डायरेक्टली वीरगंज नाका से ही अब आना शुरू हो गया है, सहज हो गई है पहले से परिस्थिति।
संविधान में अपने अधिकार सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन कर रहे मधेसी मोर्चा के नेता अब जुलूस, मार्च और विरोध प्रदर्शन जैसे कार्यक्रमों के जरिए अपनी आवाज नेताओं तक पहुंचाएंगे। हड़ताल जरूर खत्म हो गई है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच सुलह नहीं हुई है। ऐसे में समस्या का थाई हल कब तक होगा ये कहना मुश्किल है। ब्रिज कुमार यादव, BBC, जनकपुर धाम, नेपाल।
उत्तर प्रदेश में 13 फरवरी को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ये सीटें हैं फैजाबाद की बीकापुर, सहारनपुर जिले की देवबंद और तीसरी सीट है मुजफ्फरनगर। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं कि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर मतदाताओं को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। देवबंद और मुजफ्फरनगर में भाजपा ने चुनाव प्रचार की कमान उन नेताओं के हाथ में दे रखी है जिन पर यहाँ वर्ष 2013 में दंगा कराने के आरोप हैं। BBC संवाददाता सलमान रावी ने मुजफ्फरनगर के भाजपा नेता सत्यपाल सिंह से बात की और ध्रुवीकरण के आरोपों पर उनका जवाब जानना चाहा।
मुजफ्फरनगर में ये हम लोगों को तो इस तरह की स्थिति जिंदगी जी रहे हैं कि हमारे लोगों पे 200 मुकदमे हैं, उन लोगों पे 10 मुकदमे भी नहीं है। हमारे लोग आज तक जेलों में पड़े, उनका कोई आदमी भी जेल में नहीं है। पक्षपात वो कर रहे हैं, क्या हमारे ही लोग दोषी हैं? अगर हम इनका सम्मान और हम इनका इज्जत नहीं करेंगे और हम अब निर्दोष लोगों को बचाने का काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? समाजवाद है तो हमारे अंदर है, वो नाम के समाजवादी हैं, असली हम हैं।
जिले के प्रमुख हैं पार्टी के, यहाँ पर गन्ने के किसानों का इतना ज़बरदस्त जो है आंदोलन चल रहा है, इतना रोष है उनके अंदर, लेकिन कहीं से भी गन्ने के किसानों की कोई बात नहीं आ रही है। कहीं आप लोग जो है हिंदू मुसलमान के चक्कर में लगे हुए हैं।
हिंदू मुस्लिम, हम विकास की बात करते हैं, गन्ने की बात कर रहे हैं, गन्ने के आंदोलन किए 1991 में आपको याद होगा कि कल्याण सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने एक मिल मालिक को जेल भेज दिया था, सारा पेमेंट तुरंत हो गया था।
तो ये जो उपचुनाव हैं दोनों सीटों के, देवबंद और मुजफ्फरनगर, देवबंद भी काफी महत्वपूर्ण सीट है क्योंकि वो RSS के होल टाइमर कुंदीर जी जो हैं
जी,
वो लड़ रहे हैं चुनाव।
हाँ, हाँ,
पहले जेल भी जा चुके हैं वो।
हाँ, हाँ, हाँ।
मर्डर केस में?
नहीं, मर्डर केस में नहीं, वो मर्डर तो हमारे पे लोग भाई सरकार लगाती है, हम जाते नहीं, लेकिन हमें उसकी परवाह नहीं, हम राष्ट्र की परवाह करते हैं, हम देश की परवाह करते हैं।
और हमारा एजेंडा,
हिंदुत्व का एजेंडा तो हमारा संगठन है वो करेगा, जो ध्येय है वो राजनीति है, राजनीति में हम सब लोग राजनीतिक काम करते हैं।
ये बताइए कि आप संगठन के नाते आप मुसलमानों के बारे में क्या सोचते हैं यहाँ के जो यहाँ रह रहे हैं इस इलाके में?
अभी हमारे माननीय रेल राज्य मंत्री आए और वहाँ कई रेल के स्टॉपेज नहीं थे, उन्होंने स्टॉपेज वहाँ लगवाए हैं केवल इसी वजह से कि यहाँ एक समुदाय का विश्व स्तर का एक यहाँ स्थान है, उन्होंने लगवाए।
यहाँ के मुसलमान जो है इनका व्यवहार किस तरह से हिंदुओं के साथ, आपस में जो संबंध है हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का इतने सालों का, वो किस तरह का रहा है? यहाँ के लोग तो पार्टीशन के बाद गए भी नहीं पाकिस्तान।
हमारे संबंध मधुर थे, मधुर हैं और मधुर रहने की बात भी, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो मेन नेता हैं जैसे आजम खान, उन लोगों के द्वारा यहाँ दरार कराने का काम किया जा रहा, हमारे में आपस में लाइन खींचने का जो
जिस तरह का बयान वो दे रहे हैं उस तरह के बयान तो आपके भी आ रहे हैं। आप जिस तरह बोलते हैं वो उनको फायदा होता है, वो जो बोलते हैं उसका फायदा
नहीं, नहीं, ये बयान वहाँ से चलते हैं तो आपस में कहीं ना कहीं लाइन खींचने की बात आती है, हमारे नेता इस तरह का बयान नहीं देते। स्थिति ये है, अगर वो कहीं अपना कोई भी जुलूस कुछ भी हो कहीं भी निकाल लें, कहीं कुछ कर लें, कुछ नहीं, अगर हम उनके एरिया में कोई हमारी पार्टी का जुलूस या किसी चला जाए तो उस पर तुरंत वे आपत्ति लगा दें, ये अच्छी बात है।
आपसी संबंध जो है सामाजिक
सामाजिक संबंध ठीक है, सामाजिक संबंध कोई बात नहीं, हमारी तो मुद्दों की लड़ाई है।
मुसलमान दोस्त हैं आपके?
मुसलमान दोस्तों में कोई दिक्कत थोड़ा, ये हमारी लड़ाई केवल इस बात की है कि हम यहीं पे भारत में रहते हैं और भारत का विरोध करते हैं, हमारी लड़ाई केवल वो है। हमारी लड़ाई ये है, अगर किसी बहन के साथ कोई गलती करता है और वो उसको कहते हैं नहीं गलती नहीं करी, गलत को गलत कहना चाहिए।
2013 के बाद वो जो डर का जो माहौल बना वो खत्म हो पाया या अभी भी उसी तरह से है?
मुलायम सिंह की सरकार रहेगी, अखिलेश की सरकार रहेगी, तब तक वो डर खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है।
तो लोग बाजार जाते हुए क्या सोचे, कभी कुछ भी हो सकता है?
हाँ, कभी कुछ भी हो सकता है।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में मतों के ध्रुवीकरण के आरोप, स्थानीय भाजपा नेता सत्यपाल सिंह से बात कर रहे थे सलमान रावी।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
आज है बुधवार और तारीख 10 फरवरी। बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। कार्यक्रम में आगे आप सुनेंगे नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रहे पत्रकारों की क्या है दशा, और पुणे में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका से क्यों हार गई। लेकिन पहले दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं दिलनवाज पाशा।
जी संदीप, आज के अखबारों में सियाचिन में बर्फ से जो जीवित भारतीय सेना के जवान हनुमान थप्पा निकले हैं उनसे जुड़ी खबरें प्रमुखता से छापी गई हैं। साथ ही डेविड कोलेमन हेडली जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अदालत में पेश हो रहे हैं उनसे जुड़ी खबरें हैं। सबसे पहले जिक्र करेंगे दैनिक जागरण के शीर्षक का, लिखता है बर्फ का कफन चीर कर निकला जांबाज, देश भर में दुआ। और यहां हम ये भी बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हनुमान थप्पा को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। वहीं नई दुनिया अखबार का कहना है कि बर्फ के नीचे 6 दिन योग के तरीके से जिंदा रहे लांस नायक, तो ये अखबार ने लिखा है। बात करेंगे डेविड हेडली की। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने भारतीय जांच एजेंसियों को डेविड हेडली के फ़ोन डेटा उपलब्ध कराया था, और वहीं हेडली ने अदालत से कहा है कि उसे लश्कर ए तैयबा या ISI जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है से कोई धन नहीं मिला था। और अब जिक्र द इंडियन एक्सप्रेस की एक खास खबर का जो पहले पन्ने पर प्रकाशित है। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से इस्लामिक स्टेट के संबंध में गिरफ्तार किए गए 12वीं क्लास के एक छात्र की मां का कहना है कि उनके बेटे के पास एक मोबाइल फ़ोन के सिवा कुछ भी नहीं था और ये फ़ोन भी उन्हें उनके दोस्त से मिला था। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर, खास कर क्रिकेट प्रशंसकों के लिए इसका जिक्र करना चाहूँगा। इस खबर के मुताबिक मार्च में होने वाले T20 क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान की टीम शायद हिस्सा ना ले, तो ये एक अफसोस ना खबर हो सकती है जो प्रशंसक हैं उनके लिए। जनसत्ता की एक खबर के मुताबिक पाकिस्तान में हिंदू विवाह विधेयक को मंजूरी मिल गई है, यानी जिस तरीके से भारत में मुस्लिम विवाह और अलग अलग विधेयक हैं तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही एक विधेयक लाया जा रहा है। और आज एक खबर और भी अखबारों के पहले पन्ने पर है। दिल्ली में कल एक हादसा हुआ था जिसमें एक परिवार के 4 लोग और उनका कुत्ता जलकर मर गए थे, ये खबर भी कई अखबारों के पहले पन्ने पर है।
बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र छत्तीसगढ़ की 2 घटनाओं का। पहली बस्तर में पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम पर हमला, और दूसरा आम आदमी पार्टी की नेता सोनी सोरी को चिट्ठी लिखकर अज्ञात लोगों द्वारा धमकी दिया जाना, दोनों हाल फिलहाल की घटनाएं हैं जिनका मानवाधिकार संगठनों ने आलोचना की है, निंदा की है, भर्त्सना की है और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। सवाल पत्रकारों की दशा पर भी उठे हैं। सुनिए रायपुर से आलोक पुतुल की रिपोर्ट।
2 दिन पहले जब बस्तर में सामाजिक एकता मंच के सदस्यों ने
स्वतंत्र पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम के घर पर कथित रूप से हमला बोला तो इलाके के थानेदार और जिले के एसपी पूरे मामले से पल्ला झाड़ते रहे। मालिनी की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। मामला सोशल मीडिया में पहुंचा और सोमवार को मालिनी के घर पर हुआ हमला ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। तब कहीं जाकर मालिनी की रिपोर्ट पर जांच शुरू हुई। मालिनी पिछले 4 सालों से बस्तर में रह रही हैं और इससे पहले वे अंतर्राष्ट्रीय संगठन रेड क्रॉस के लिए काम कर रही थीं। लेकिन मालिनी का दावा है कि वे पिछले 1.5 साल से पूरी तरह से पत्रकारिता के पेशे में हैं और बस्तर में पुलिस की ज्यादतियों के खिलाफ लगातार लिख रही हैं। असल में पिछले 2 महीनों से कथित माओवादियों के खिलाफ बस्तर में पुलिस के समर्थन से सामाजिक एकता मंच नामक संगठन सक्रिय हुआ है, जिसके निशाने पर मानवाधिकार संगठन हैं। अपने घर पर हुए हमले को लेकर मालिनी कहती हैं,
लोग जो थे जो आए जिनको मैं पहचानती हूँ सामाजिक एकता मंच के सदस्य बताए हैं, वो लोग हमारे घर पहले 10 जनवरी को आए थे और उस दिन आके मुझसे काफी पूछताछ की, क्या कौन है, क्या करती है, कौन कौन रहता है, कब से है यहाँ। उन्होंने कहा आपके लेख ऐसे हैं जिसमें आप कह रहे हो स्कूल और सड़क नहीं होना चाहिए। मैंने बोला मैंने ऐसे कहीं के लिए लिखा है, आप पढ़े पहले उसके बाद में हम बातचीत करते। और तो वो कह रहे नहीं हमको बातचीत करना ही नहीं।
क्या इस तरह के हमलों से आप डरी हुई हैं? मालिनी कहती हैं,
खतरा तो महसूस होगा। कल भी मैं जब गई थी मेरी बेटी अकेली थी तो मुझे भी थोड़ा डर सा लग रहा था कि ऐसे छोड़ के जाएंगे ना। गुंडागर्दी से तो दहशत फैलाने की ही कोशिश की है इन्होंने।
मानवाधिकार संगठन POCL की छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर लाखन सिंह का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद किए गए सर्वाजुड़ुम नामक संगठन के लोगों को पुलिस सामाजिक एकता मंच के नाम से एकत्र करके लोगों पर हमले करवा रही है।
अभी 2 दिन पहले ही सोनीसपुरी घर में पर्चे फेंके गए, उनसे कहा गया तुमको जहाँ से मार देंगे, उनके कपड़े फाड़ देंगे, उनको नंगा कर देंगे। इस तरह के जो कैंपेन उनका चल रहा है उसकी मालिनी सुब्रमण्यम अभी ताजा शिकार हुई है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक डॉक्टर संकेत ठाकुर भी मानते हैं कि इस तरह के हमलों और धमकियों के पीछे पुलिस है।
पिछले 3 महीनों में विशेष रूप से अगर देखा जाए तो बस्तर की आदिवासी महिलाओं के साथ जिस तरह से यौन अपराध और गैंग रेप तक की वारदात सुरक्षा बलों के द्वारा की गई है, उन सब को आम आदमी पार्टी ने सोनी सोरी जी के माध्यम से मीडिया तक और आमजन तक पहुंचाया है। आज उसी का परिणाम है कि सोनी सोरी जी के ऊपर सीधे हमला तो पुलिस नहीं कर पा रही है, तो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ऐसे लोगों की टीम खड़ी कर दी है जो जबरदस्ती सोनी सोरी जी का बीजापुर में विरोध कर रहे हैं।
लेकिन जिस संगठन सामाजिक एकता मंच पर हमले के आरोप हैं, उस मंच के आनंद मोहन मिश्रा सारे आरोपों को मनगढ़ंत बताते हैं।
इसमें पिछले दिनों अनर्गल आरोप लगाए जा रहे थे, जबकि हम लोग जन मिलिशिया हिंसा के सख्त खिलाफ हैं और गैर लोकतांत्रिक तरीकों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, और ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। क्योंकि अभी जो समर्पण की नीति है और बस्तर के IG कल्लूरी ने जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, आम जनता को अपने विश्वास में लेकर, गांव वालों को अपने विश्वास में लेकर, इससे ये बौखलाए हुए हैं।
इस पूरे मामले पर हमने राज्य सरकार का भी पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन इस मुद्दे पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हालांकि राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस ने पत्रकार मालिनी सुब्रमण्यम पर हमले को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा,
दुर्भाग्यजनक है कि बस्तर में पत्रकारिता जगत में काम कर रहे लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ये हमले छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के पुलिस के संरक्षण में और पुलिस के इशारे पर किए जा रहे हैं।
वरिष्ठ पत्रकार और एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी के सदस्य रुचिर गर्ग से भी हमने बस्तर में पत्रकारिता की स्थितियों को समझने की कोशिश की।
बस्तर में पुलिस केवल बंदूक के मोर्चे पर मुस्तैद नहीं है, बल्कि उसको लगता है कि प्रचार के मोर्चे पर भी उसको नक्सलियों का मुकाबला करना है। ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण काम बस्तर के पत्रकारों का हो गया है। बस्तर में पत्रकारों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो किस लक्ष्मण रेखा के तहत पत्रकारिता करे, उसकी अपनी बनाई लक्ष्मण रेखा या पुलिस की उम्मीदों की लक्ष्मण रेखा या वो लक्ष्मण रेखा जो नक्सलियों की उम्मीदों की है।
बस्तर में कुछ साल पहले माओवादियों ने 2 पत्रकारों की यह कहते हुए हत्या कर दी थी कि दोनों पत्रकार पुलिस के लिए काम करते हैं। पिछले साल बस्तर के 2 पत्रकारों को पुलिस ने यह कहते हुए गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया कि दोनों पत्रकार माओवादियों के लिए काम करते हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि बस्तर में काम करना आसान नहीं है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब बात उन खबरों की जिन पर आज रहेगी हमारी नजर।
अमेरिकी जेल में बंद चरमपंथी डेविड हेडली की 2008 में मुंबई पर हुए हमलों के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय अदालत में गवाही आज भी जारी रहेगी। इसी मामले पर आज इस्लामाबाद की एक अदालत में भी सुनवाई हो सकती है। वहीं बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार से चर्चा में आए उत्तर प्रदेश के इंजीनियर यादव सिंह के खिलाफ दायर मामले की सुनवाई आज गाजियाबाद की एक विशेष अदालत में होगी। सीरियाई विद्रोही समूहों के मुख्य समन्वयक रियाद हिजाब सीरियाई गृह युद्ध के मुद्दे पर आज लंदन में ब्रितानी विदेश मंत्री फिलिप हेमंट से मुलाकात करेंगे। कुर्द अलगाववादी आज मॉस्को में अपना प्रतिनिधि दफ्तर शुरू करेंगे। रूस सीरियाई शांति वार्ता में इन समूहों को भी शामिल करना चाहता है, जबकि तुर्की इसके विरोध में है। फ्रांसीसी संसद का निचला सदन आज आपातकाल को संविधान में शामिल कराने के मुद्दे पर मतदान करेगा। चरमपंथ और गंभीर अपराधों के दोषियों से फ्रांसीसी नागरिकता छीनने के विवादित मुद्दे पर भी आज मतदान होगा। और अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए न्यू हैम्पशायर में हुए प्राथमिकी चुनावों के नतीजों के बाद के राजनीतिक घटनाक्रम पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी।
कल श्रीलंका ने पुणे में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका ने पहले तो भारत को केवल 101 रनों पर समेटा और उसके बाद 18 ओवर में जीत का लक्ष्य हासिल भी कर लिया। श्रीलंका की जीत और भारत की हार की क्या वजह रही, जानने के लिए हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली से बात की।
मुख्य कारण तो 3 कहना चाहूंगा। एक तो आपने बैटिंग बहुत खराब करी और जब टारगेट छोटा था तो बॉल डिफेंड करने जैसा टारगेट था ही नहीं। एक बार फिर से ये उभर के आ गया कि अगर पिच में जान होती है तो हमारे खिलाड़ियों की जान निकल जाती है।
और आपको लगता है कि श्रीलंका के कप्तान दिनेश चांदीमल ने टॉस जीतकर जो फील्डिंग करने का फैसला किया वो बिल्कुल सही साबित हुआ, और तारीफ करनी होगी उनके नए गेंदबाजों की, क्योंकि पहला ही 2020 मैच खेल रहे रचिता ने जिस तरह से 3 विकेट लिए और उसके बाद शनाका ने भी 3 विकेट लिए, तो गेंदबाजों की भी तारीफ करनी होगी।
देखिए, गेंदबाजों के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि पिच से उनको बहुत जो है मदद मिल रही थी, मूवमेंट थी, उछाल थी। अगर आप देखें जिस बॉल पे धोनी आउट हुए हैं वो सरप्राइज हो गए थे उस बॉल की बाउंस से। उनको उम्मीद नहीं थी कि इतनी बाउंस भी था और तेज भी निकला बहुत बॉल वो पड़ने के बाद। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि श्रीलंकन बॉलर्स ने एक प्लान के हिसाब से बॉल डाला, उनको मालूम था कि किस खिलाड़ी को कैसी बॉल डालनी है, और थोड़ी सी अगर मूवमेंट हुई, क्लेवर चेंज ऑफ पेस भी था, वो अपनी पूरी तैयारी से आए थे, कॉन्फिडेंट भी थे, और मैं कहूंगा अच्छा डिसीजन, क्योंकि कंडीशंस देखते हुए पहले बॉलिंग करना पसंद करते।
लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो भारतीय टीम काफी एक्सपीरियंस्ड है और अभी ऑस्ट्रेलिया में लगातार 3 मैच जीत कर भी आ रही थी। क्या आपको कहीं भी किसी तरह की इस तरह की विकेट की उम्मीद थी, क्योंकि भारत में अमूमन इतने ग्रीन टॉप विकेट नजर ही नहीं आते?
देखिए, आपको थोड़ा सा तो चेंज करना पड़ेगा ना। ऑस्ट्रेलिया के टाइम पे भी मैंने बात की थी कि वहाँ पे पहली बार ऐसा देखा गया, एकदम पिचेस ऐसी थी जो बिल्कुल बल्लेबाज को सपोर्ट करती थी, बॉलर्स के लिए कुछ था ही नहीं, नीरस पिचों पे बॉलर के लिए कोई चांस ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका को जैसे चांस मिला, टॉस जीत गए, क्रेडिट देना पड़ेगा कि बॉल भी डाला है। कई बार क्या होता है कि जब अगर आपको हेल्पफुल पिच मिलती है तो आप थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत तेज डालने की कोशिश करते हैं या बाउंस करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा सीम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बिल्कुल लिमिटेशन में बॉल डाला और सारा टाइम प्रेशर बना के रखा। भारत की विकेटें भी गिरती चली गई। अगर आप देखें आपकी टीम में अश्विन ने नीचे आके रन्स बनाए हैं, वरना तो आपके पास एक बैट्समैन ऐसा नहीं था जो वहाँ पे थोड़ी देर समझता खेल को और कोशिश करता, क्योंकि ऑफकोर्स इसमें समझने का टाइम कम होता है, लेकिन यही तो खेल है T20 का।
और अब कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर दिलनवाज पाशा से।
बीबीसी समाचार अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक न्यू हैम्पशायर में हुए प्राथमिकी मतदान में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से बर्नी सैंडर्स आगे हैं। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद के करीबी सलाहकार ने संकेत दिए हैं कि सीरियाई सेना देश के उत्तरी इलाकों में चल रही लड़ाई को तुर्की सीमा तक ले जाएगी। अमेरिका की खुफिया सेवा के प्रमुख जेम्स क्लेपर के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को दरकिनार कर अपना परमाणु संयंत्र शुरू कर दिया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बिजली घरों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन से निपटने की राष्ट्रपति ओबामा की नीति पर अस्थायी पाबंदी लगा दी है। मैक्सिको की संघीय पुलिस ने सिनालोआ ड्रग कार्टल की वित्तीय प्रबंधक मानी जा रही एक महिला को गिरफ्तार किया है। मैक्सिको के ही गुरेरो प्रांत में लापता हुए 43 छात्रों के मामले में एक स्वतंत्र जांच रिपोर्ट ने सरकार के आधिकारिक बयान पर सवाल उठाए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे देवाशीष कुमार। विश्व भारती में ठीक एक घंटे के बाद 8 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।